नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन आर ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। मार्को रूबियो की पुस्तक डिकेड्स ऑफ डिकेडेंस समकालीन अमेरिकी राजनीति, अर्थव्यवस्था और सामाजिक जीवन पर एक वैचारिक गैर कथा विश्लेषण है। इसमें रूबियो का मुख्य तर्क है कि शीत युद्ध के बाद प्रभावशाली राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अभिजात वर्ग ने ऐसी नीतियों और धारणाओं को बढ़ावा दिया जिन्होंने अमेरिका की दीर्घकालिक शक्ति को कमजोर किया। वे अमेरिकी सामर्थ्य के चार आधार बताते हैं: अच्छे स्थानीय रोजगार, स्थिर परिवार, भौगोलिक समुदाय और स्वतंत्रता व सुरक्षा की रक्षा करने वाला संप्रभु राष्ट्र। पुस्तक के अनुसार वैश्वीकरण, वित्तीय क्षेत्र की बढ़ती प्रधानता, तकनीकी विशेषज्ञों पर अत्यधिक निर्भर शासन और साझा राष्ट्रीय पहचान के प्रति उदासीनता ने इन आधारों को क्षति पहुंचाई। रूबियो आर्थिक असमानता, औद्योगिक क्षरण, संस्थाओं में घटते विश्वास और चीन जैसी प्रतिस्पर्धी शक्ति के उभार को परस्पर जुड़ी समस्याओं के रूप में देखते हैं। यह अकादमिक शोध ग्रंथ की अपेक्षा एक राजनीतिक निदान और नीति पक्षधरता वाली पुस्तक है। इसका उद्देश्य पाठक को यह समझाना है कि हाल की अमेरिकी बेचैनी अलग अलग संकटों का समूह नहीं, बल्कि कई दशकों के अभिजात निर्णयों का परिणाम है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले अमेरिकी शक्ति के चार आधारों का केंद्रीय ढांचा। पुस्तक का संगठन रूबियो के चार आधारों के ढांचे पर टिका है: अच्छे स्थानीय रोजगार, स्थिर परिवार, वास्तविक भौगोलिक समुदाय और संप्रभु राष्ट्र। यह ढांचा महत्वपूर्ण है क्योंकि लेखक आर्थिक और सांस्कृतिक प्रश्नों को अलग नीतिगत खांचों में रखने से इनकार करते हैं। उनके अनुसार किसी क्षेत्र में टिकाऊ और सम्मानजनक काम घटता है तो केवल आय नहीं घटती, परिवारों की स्थिरता, स्थानीय संस्थाओं की क्षमता और नागरिकों का अपने देश की व्यवस्था पर भरोसा भी प्रभावित होता है। इसी प्रकार परिवार को केवल निजी विकल्प मानने से बच्चों, देखभाल और सामाजिक निरंतरता से जुड़े व्यापक परिणाम छिप जाते हैं। रूबियो समुदाय को इंटरनेट पर बने संपर्कों से अलग मानते हैं। उनके लिए समुदाय का अर्थ पड़ोस, स्थानीय संस्थाएं, साझा जिम्मेदारियां और निकट भौगोलिक जीवन है। चौथा आधार राष्ट्र की संप्रभुता है, जिसका अर्थ दुनिया से कटना नहीं बल्कि सीमाओं, सुरक्षा, उत्पादन क्षमता और लोकतांत्रिक निर्णयों पर राष्ट्रीय नियंत्रण बनाए रखना है। इस ढांचे की शक्ति इसकी सरलता में है क्योंकि यह रोजगार, परिवार और विदेश नीति को एक ही राष्ट्रीय क्षमता के प्रश्न से जोड़ता है। इसकी सीमा भी यही है कि इतने व्यापक सामाजिक परिवर्तनों को चार श्रेणियों में रखने से कुछ जटिल कारणों और वैकल्पिक व्याख्याओं को कम स्थान मिलता है। दूसरा, वैश्वीकरण और वित्तीयकरण से स्थानीय अर्थव्यवस्था का क्षरण। रूबियो के आर्थिक तर्क का केंद्र यह दावा है कि अमेरिकी अभिजात वर्ग ने वैश्विक आर्थिक एकीकरण को लगभग निर्विवाद अच्छाई मान लिया। उनके अनुसार उत्पादन को विदेश भेजने, आयात पर निर्भरता बढ़ाने और पूंजी के त्वरित प्रतिफल को प्राथमिकता देने से घरेलू औद्योगिक क्षमता तथा कामकाजी और मध्यम वर्ग के अवसर कमजोर हुए। वे विशेष रूप से उस बदलाव की आलोचना करते हैं जिसमें वास्तविक वस्तुओं, तकनीक और उत्पादन पर आधारित अर्थव्यवस्था की तुलना में वित्तीय क्षेत्र का प्रभाव बढ़ा। इस दृष्टि में शेयर मूल्य, सस्ते उपभोक्ता उत्पाद और निवेश लाभ को सफलता के संकेतक मानने से उन शहरों और श्रमिकों की लागत अनदेखी हुई जिनकी आजीविका कारखानों और स्थानीय आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्भर थी। तर्क केवल मजदूरी का नहीं है, रूबियो इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जोड़ते हैं क्योंकि महत्वपूर्ण उद्योगों और तकनीकी क्षमता का क्षय विदेशों पर निर्भरता बढ़ा सकता है। चीन का उभार उनके लिए इस नीति की रणनीतिक कीमत का प्रमुख उदाहरण है। पुस्तक घरेलू उद्योग और नवाचार को पुनर्जीवित करने वाली नीति की मांग करती है। आलोचक ठीक ही इंगित करते हैं कि इस निदान के समर्थन में पुस्तक अक्सर व्यापक दावों और उदाहरणों पर निर्भर रहती है, विस्तृत अनुभवजन्य प्रमाणों पर कम। फिर भी यह बाजार दक्षता और राष्ट्रीय लचीलापन के बीच वास्तविक नीति तनाव को स्पष्टता से सामने रखती है। तीसरा, परिवार और स्थान आधारित समुदाय को सार्वजनिक प्रश्न मानना रूबियो परिवार और समुदाय के विषय को केवल नैतिक चिंता के रूप में प्रस्तुत नहीं करते बल्कि इसे सामाजिक स्थिरता और लोकतांत्रिक जीवन की बुनियादी संरचना मानते हैं। उनका तर्क है कि कई दशकों से प्रभावशाली सांस्कृतिक संदेशों ने पारिवारिक प्रतिबद्धता, स्थानीय जुड़ाव और साझा इतिहास की आवश्यकता को कमतर बताया। उनके अनुसार इसका परिणाम यह हुआ कि व्यक्ति को अधिक स्वतंत्र और गतिशील मानने वाली भाषा ने उन संबंधों की अहमियत छिपा दी जिनसे देखभाल, अनुशासन, बच्चों का पालन और संकट के समय सहारा मिलता है। वे ऑनलाइन संपर्क को उपयोगी मानने की संभावना से पूरी तरह अलग नहीं करते पर उसे पड़ोस, धार्मिक संस्थाओं, विद्यालयों और स्थानीय संगठनों जैसे प्रत्यक्ष समुदायों का विकल्प नहीं मानते। इस विचार में स्थान का महत्व इसलिए है कि नागरिक जिम्मेदारी अक्सर वहां विकसित होती है जहां लोग एक दूसरे के जीवन के परिणामों से जुड़े होते हैं। पुस्तक की नीति दिशा परिवार, समर्थक कर व्यवस्था, शिक्षा संबंधी सुधार और स्थानीय संस्थाओं को अधिक महत्व देने की ओर जाती है। यहाँ पाठक को रूबियो की वैचारिक स्थिति स्पष्ट दिखाई देती है। समर्थकों के लिए यह सामाजिक विखंडन पर आवश्यक ध्यान है, आलोचकों के लिए परिवार की उनकी परिभाषा और सांस्कृतिक बदलावों का उनका आकलन अत्यधिक रूढ़िवादी या अपर्याप्त रूप से समावेशी लग सकता है। फिर भी पुस्तक का उपयोगी प्रश्न बना रहता है, क्या आर्थिक नीति सामाजिक संबंधों की लागत को पर्याप्त रूप से गिनती है? चौथा, तकनीकी शासन, संस्थागत अविश्वास और अभिजात सहमति। पुस्तक में डिकेडेंस का अर्थ केवल व्यक्तिगत विलास या भ्रष्टाचार नहीं है। रूबियो इसे उस अभिजात सहमति के रूप में इस्तेमाल करते हैं जिसमें नीति निर्माता, बड़े वित्तीय हित, निगम, विशेषज्ञ संस्थान और सांस्कृतिक प्रभाव केंद्र आम नागरिकों की चिंताओं से दूर हो गए। उनके अनुसार यह सहमति शीत युद्ध के बाद के उस आशावाद से निकली जिसमें उदार वैश्विक व्यवस्था, बाजार और विशेषज्ञ प्रबंधन को इतिहास की अंतिम दिशा जैसा माना गया। रूबियो का आरोप है कि जब इन नीतियों से रोजगार, सीमाओं, सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा या सांस्कृतिक प्रश्नों पर असंतोष बढ़ा, तब अभिजात संस्थानों ने उसे गंभीर लोकतांत्रिक संकेत मानने के बजाय अज्ञान या पिछड़ेपन के रूप में खारिज किया। इस प्रक्रिया से संस्थाओं पर भरोसा घटा और नागरिकों को लगा कि महत्वपूर्ण निर्णय उनकी सहमति के बिना लिए जा रहे हैं। पुस्तक हाल के आर्थिक, महामारी संबंधी और सांस्कृतिक राजनीतिक संकटों को इस टूटे विश्वास के संकेतों की तरह जोड़ती है। इसकी विशिष्टता यह है कि रूबियो संस्थागत अविश्वास को केवल दलगत संघर्ष नहीं, प्रतिनिधित्व और जवाबदेही की समस्या मानते हैं। लेकिन इस हिस्से की कमजोरी यह है कि अभिजात वर्ग एक बहुत व्यापक श्रेणी बन जाता है। अलग संस्थाओं, हितों और नीतिगत सीमाओं के बीच भेद कम होने पर तर्क कभी कभी एकतरफा प्रतीत हो सकता है। अंत में घरेलू पुनर्निर्माण और संप्रभु विदेश नीति की तीन दिशाएं रूबियो पुस्तक को केवल पतन के वर्णन पर समाप्त नहीं करते। वे नीति के लिए तीन परस्पर संबद्ध दिशाएं रखते हैं, घरेलू उद्योग और नवाचार का पुनर्निर्माण, परिवार तथा समुदाय को मजबूत करने वाली सामाजिक व्यवस्था और राष्ट्रीय हित पर केंद्रित संप्रभु विदेश नीति। पहली दिशा में सरकार की भूमिका केवल बाजार को खुला छोड़ना नहीं बल्कि उन परिस्थितियों को बनाना है जिनमें अमेरिका महत्वपूर्ण वस्तुओं, प्रौद्योगिकियों और आपूर्ति श्रृंखलाओं में सक्षम रह सके। दूसरी दिशा आर्थिक निर्णयों के सामाजिक परिणामों पर जोर देती है। रोजगार, शिक्षा, कर नीति और स्थानीय संस्थाओं को इस कसौटी पर देखना चाहिए कि वे परिवारों और समुदायों को अधिक सक्षम बनाते हैं या नहीं। तीसरी दिशा में रूबियो अमेरिका को अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियों से हटाने की नहीं बल्कि ऐसी विदेश नीति अपनाने की बात करते हैं जो सुरक्षा, लोकतांत्रिक हितों और घरेलू क्षमता को प्राथमिकता दे। चीन की चुनौती इस दृष्टि को तात्कालिकता देती है। यह एजेंडा पारंपरिक मुक्त बाजार, रूढ़िवाद और अनियंत्रित वैश्वीकरण दोनों से कुछ दूरी बनाता है, इसलिए इसे समकालीन अमेरिकी दक्षिणपंथ के औद्योगिक नीति समर्थक रुझान से जोड़ा जा सकता है। फिर भी प्रस्तावों की व्यवहारिकता पर प्रश्न बने रहते हैं। उद्योग समर्थन की सीमा क्या हो, किसे लाभ मिले और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं व अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में संतुलन कैसे बने। पुस्तक इन कठिन कार्यान्वयन प्रश्नों का विस्तृत खाका नहीं देती। निष्कर्ष में, डिकेड्स ऑफ डिकेडेंस उन पाठकों के लिए उपयोगी है जो अमेरिकी राजनीति में आर्थिक असुरक्षा, सांस्कृतिक ध्रुवीकरण, संस्थागत अविश्वास और विदेश नीति की चिंता को एक साझा ढांचे में समझना चाहते हैं। विशेष रूप से नीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, औद्योगिक रणनीति और समकालीन रूढ़िवादी विचारधारा में रुचि रखने वाले पाठक इससे लाभ ले सकते हैं। भारतीय पाठक भी इसे एक अमेरिकी राजनीतिक तर्क के रूप में पढ़ सकते हैं क्योंकि इसमें घरेलू उत्पादन, आपूर्ति श्रृंखला, राष्ट्रीय क्षमता और सामाजिक संस्थाओं के संबंध जैसे प्रश्न उठते हैं जो अनेक लोकतंत्रों में प्रासंगिक हैं। पुस्तक की सबसे बड़ी बौद्धिक उपयोगिता यह है कि यह आर्थिक दक्षता को सामाजिक और रणनीतिक लागतों से अलग करके देखने को चुनौती देती है। यह पूछती है कि सस्ती वस्तुएं, पूंजी की गतिशीलता और विशेषज्ञ प्रशासन तब कितने पर्याप्त हैं जब स्थानीय रोजगार, परिवार और लोकतांत्रिक विश्वास कमजोर पड़े। समान विषय की अनेक राजनीतिक पुस्तकों की तुलना में इसका अंतर चार आधारों वाला स्पष्ट ढांचा और आर्थिक राष्ट्रवाद, पारिवारिक स्थिरता तथा विदेश नीति को एक ही निदान में जोड़ना है। साथ ही इसे संतुलित ढंग से पढ़ना आवश्यक है। यह निष्पक्ष, अकादमिक इतिहास या आंकड़ों से परिपूर्ण नीति अध्ययन नहीं बल्कि एक निर्वाचित राजनेता का सशक्त वैचारिक हस्तक्षेप है। पाठक को इसके दावों, विशेषकर अभिजात वर्ग और सांस्कृतिक परिवर्तन संबंधी सामान्यकरणों, को अन्य शोध और विपरीत दृष्टिकोणों के साथ परखना चाहिए। इसी आलोचनात्मक पठन से पुस्तक सबसे अधिक उपयोगी बनती है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं मार्को रूबियो, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए Amazon लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।